ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है अमृत भारत स्टेशन योजना से रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसका रेल नेटवर्क बहुत व्यापक है और दूर दराज के कोनों को रेलवे के माध्यम से ये पूरा नेटवर्क जोड़ता है। अगर हम रेलवे स्टेशनों की बात करें तो हमारे पास रेलवे स्टेशन इतनी ज्यादा संख्या में है कि देश का कोना कोना इन रेलवे स्टेशनों से जुड़ता है। और अब लेकिन समय है कि इन रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाए, उन्हें अत्याधुनिक बनाया जाए। इसी दिशा में सरकार ने एक खास योजना शुरू की है, अमृत भारत स्टेशन योजना। कल यानी 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में होंगे और यहां पर 18 राज्यों के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वे उद्घाटन भी करेंगे। आइए बीकानेर में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद कुमार से ये रिपोर्ट सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान दौरे के दौरान बीकानेर से कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित की गई 103 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। ये अमृत स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित है। इनमें से सबसे अधिक 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि 18 गुजरात में, 15 महाराष्ट्र में, 9 तमिलनाडु में, राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 6 तथा छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में 5-5 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास पर 1100 करोड़ से अधिक की लागत आई है। इन अमृत स्टेशनों को शहरों की कला, संस्कृति और विरासत के तर्ज पर तैयार किया गया है। राजस्थान स्थित देशनोक अमृत स्टेशन का विकास प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के वास्तुकला से प्रेरित है, तो वहीं तेलंगाना का बेगमपेट रेलवे स्टेशन काकतीय साम्राज्य की वास्तुकला, बिहार स्थित थावे स्टेशन माँ थावे वाली शक्ति पीठ से और गुजरात का डाकोर स्टेशन रणछोड़ राय जी महाराज से प्रेरित है। बीकानेर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रेल और संरचना के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक रेल और संरचना के साथ साथ यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
रेलवे की एक महत्वपूर्ण योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके तहत जो स्टेशन होती है उसमें यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे देशनोक जिस रेलवे स्टेशन से वो 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे, उसमें देशनोक में 14 करोड़ 10 लाख का काम हुआ, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ी, ऐसे हर जगह बढ़ी, उनका लोकार्पण करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना है रेलवे स्टेशन के सुधार की। और जो बड़े रेलवे स्टेशन है वो इसमें सम्मिलित नहीं, वो अलग है। जैसे हमारा बीकानेर का रेलवे स्टेशन है, वो तो अकेला ही 471 करोड़ का है। उसको रीडेवलपमेंट प्लान रेलवे स्टेशन कह रहे हैं, वो बड़े रेलवे स्टेशन का है। ये जो छोटे हमारे स्टेशन है ना, उनके डेवलपमेंट का कल लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। ये टोटल ऐसे 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पूरे देश में है। ये फर्स्ट फेज में 103 रेलवे स्टेशनों में जो काम हुआ है उसका लोकार्पण कल करेंगे प्रधानमंत्री जी देशनोक से।
इन स्टेशनों को दिव्यांगजनों की सुविधा के अनुकूल तैयार किया गया है ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा ये स्टेशन उन्नत सूचना प्रणाली से युक्त है, साथ ही यात्रियों को यहाँ मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस रिपोर्ट के बाद आइए चर्चा को शुरू करते हैं और मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि अभी हमने अपने संवाददाता आनंद जी से सुना कि किस तरह से रेलवे स्टेशनों में अलग अलग सुविधाएं देकर उसमें सुधार किया जा रहा है, उन्हें अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि भारत में जो रेलवे स्टेशन है उनकी जरूरतों के अनुसार उनको एक विस्तृत योजना के तहत सुधार किया जाना कितना जरूरी समझा गया इस योजना के तहत, और अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना क्यों अहम है आज के दौर में जबकि हमें स्टेशनों का कायाकल्प करना है।
जी, अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो सिर्फ एक स्टेशन के आधुनिकीकरण की योजना नहीं है, वो उसको एक सिटी सेंटर में बदल देने की योजना है जिसमें कि विकास भी हो और वो उस शहर के विरासत का एक चिन्ह भी बन जाए। तो ये आधुनिकीकरण की नई स्कीम है जिसको हम अमृत भारत योजना कहते हैं। इसमें 1300 स्टेशन्स को अभी तक चुना गया है और उनकी नींव भी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही रखी गई। उसमें से 103 स्टेशन जो हैं वो तैयार हैं और जिनका शीघ्र ही प्रधानमंत्री द्वारा इनॉग्रेशन होगा। ये स्टेशन जो हैं इनमें जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं, जिससे कि उनका आना जाना सुगम तरीके से हो सके, उनको अपनी ट्रेन पकड़ने में या ट्रेन से उतर के बाहर निकलने में आराम से साइनेजेस मिल जाएं, जिससे कि वो सुविधाजनक रूप से बाहर आ सके। साथ ही हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पर टच वाले साइनेजेस लगाए गए हैं, जिससे कि वो बहुत आसानी से इसको सुगम रूप से नेविगेट कर सकें। और रैंप्स वगैरह बनाए गए हैं, जिससे कि जिनकी मोबिलिटी बाधित है या अगर वो वृद्ध सज्जन हैं तो वो लोग भी आसानी से स्टेशन पर एक्सेस कर सकें।
बिल्कुल, आपने एक बहुत सही बात बताई कि ये स्टेशन न सिर्फ एक अत्याधुनिक स्टेशन का नमूना है, बल्कि साथ ही ये शहरों का एक केंद्र बनने वाले हैं। जब 2021 में ये योजना शुरू हुई थी, तब ये देखा गया था कि गांधीनगर स्टेशन में जब अत्याधुनिक सुविधाएं और 5-स्टार होटल के साथ जो पुनर्विकसित या दोबारा से सुधार की गई एक सुविधा थी, और दूसरी तरफ हमने देखा कि रानी कमलापति स्टेशन का भी जब कायाकल्प हुआ, तो हमने देखा कि स्टेशन का जो एक महत्व है वो यात्रियों के लिए केवल आने जाने का ही एक रास्ता मात्र नहीं है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा कुछ एक चीज है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में कि जब इस योजना के तहत स्टेशनों को साफ सुथरा किया जा रहा है, उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं और चरणबद्ध तरीके से उनको शहरों से जोड़ा जा रहा है, कैसे ये न सिर्फ रेलवे की बल्कि आसपास के इलाकों की भी तस्वीर को बदलेंगे?
जी, ये स्टेशन जो है इन शहरों की पहचान बन जाएंगे और उस शहर की जीवन शैली का प्रतीक भी बन जाएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि स्टेशन जो हैं ट्रेडिशनली ऐसी जगह पर थे जो कि पहले शहर के एक तरफ होते थे, पर जैसे जैसे शहर बढ़ते चले गए तो ये स्टेशन जो हैं ये ठीक स्टेशन के बीच में आ गए और दोनों तरफ आबादी का इलाका रह गया, जिसको कि आपस में जुड़ने के लिए बहुत लंबे लंबे रास्ते से जाना पड़ता था। तो जब स्टेशन का पुनर्विकास और आधुनिकीकरण की बातचीत हुई तो उसमें एक ये सबसे बड़ा मुद्दा रखा गया कि ये कैसे शहर के दोनों भागों को इंटीग्रेट करे। अभी जो ये स्टेशन की वजह से शहर दो भागों में बढ़ जाता है, उसको किस तरह से इंटीग्रेशन की सुविधा दी जाए, किस तरह से वहां पे कुछ फ्लाईओवर्स लाए जाए और जो पूरा ट्रैफिक पैटर्न है उस शहर का, वहां बहुत कंजेस्टेड एरिया होता है, तो वो पूरा ट्रैफिक पैटर्न जो है उसको स्टडी करके वहां के ट्रैफिक का सोल्यूशन, एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन बनाया जाए, ये एक बहुत अहम टास्क है जो कि समृद्ध भारत योजना के तहत लिया गया है। और जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, जो बड़े शहरों में स्थित स्टेशन हैं, वहां पर ये बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसमें कि वहां की लोकल बॉडीज को भी साथ में इन्वॉल्व किया गया है और पूरे शहर के ट्रैफिक पैटर्न को सुधारने की और कंजेशन को घटाने की मुहिम ली गई है। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है, जैसे कि कुछ ऐसे शहर हैं, छोटे शहर हैं, जहां पर स्टेशन ही सबसे बड़ी जगह है और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए वो स्टेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो वो एक सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं रहकर वो एक कमर्शियल सेंटर में भी बदल जाए और वहां पर इस तरह की जगह बना दी जाए कि वहां पर अगर कुछ कमर्शियल स्पेस का यूटिलाइजेशन हो सकता है, कुछ आर्थिक एक्टिविटीज की जा सकती हैं, तो उस तरह की जगह भी इस स्टेशन पर मिल जाए। जैसे कि मैं आपसे राजस्थान के कुछ स्टेशन की बात करूंगी, वहां पर जो स्टेशन है सांगानेर, वहाँ आप जानते हैं कि वहाँ का ब्लॉक प्रिंट बहुत मशहूर है, दूर दूर तक लोग आते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं कपड़े, जो कि वहाँ के ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंट द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है कि वहाँ पर कमर्शियल स्पेस अवेलेबल हो और ये जितने भी हमारे लोकल कारीगर हैं उनको जगह मिले अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और अगर जरूरत हो तो वहाँ पर कमर्शियल अगर पोटेंशियल है बिक्री का तो वहाँ पर उसकी बिक्री भी हो सके।
और इसमें एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो योजना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना के तहत जो स्थानीय उत्पाद है, जो वहाँ का कोई खास लोकल उत्पाद है, चाहे वो शिल्प कला हो, खाद्य पदार्थ हो, तो उसको लेकर भी इन स्टेशनों में योजना है कि उसकी बिक्री को लेकर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, खासतौर पर जैसे जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ की हस्तकला, शिल्पकला, बुनकर कला और चित्रकारी, और इसके अलावा जो मसाले हैं, चाय कॉफी हैं और अन्य स्थानीय उत्पाद हैं, उसकी भी बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ेगी अगर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की योजना इन स्टेशनों में लागू होती है तो।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जैसे कि नाम दर्शाता है कि इस स्टेशन से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहां की जो स्पेशलिटी है, जो वहां के खास हैंडीक्राफ्ट्स हैं या खाने पीने का सामान है, जो भी है, उसको वहां पर बिक्री करने के लिए एक जगह मिले। और ये जो कियोस्क बनाए गए हैं या दुकानें बनाई गई हैं इन स्टेशन पर, इन पर बिल्कुल ही नाम मात्र को बस एक रेंट लिया जाता है, जिससे कि उनको कोई असुविधा नहीं हो कि हमें बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इस कमर्शियल स्पेस को लेने के लिए और अपने सामान को दिखाने के लिए या उसकी बिक्री करने। करने के लिए। ये बहुत ही आसानी से स्टेशन मास्टर से मिलकर वो उस दुकान को बुक कर सकते हैं 15 दिन से लेकर 6 महीने तक, और उसमें वो अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं और उनकी बिक्री कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल परियोजना है जिसकी वजह से बहुत सारे लोकल आर्टिजन्स जो हैं उनको अपने हुनर को दिखाने का अवसर मिला है।
जी, तो अब लखनऊ चल रहे हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता ओम जी अवस्थी ने खास रिपोर्ट भेजी है। जैसा कि शुरुआत में हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की संख्या है, कुल मिलाकर 19 स्टेशन इसमें हैं जिनका उद्घाटन किया जा रहा है। तो आइए हमारे संवाददाता से ये रिपोर्ट सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान से उत्तर प्रदेश के 19 स्टेशनों समेत 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन 19 स्टेशनों में उत्तर रेलवे के बिजनौर, सहारनपुर, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज का करछना, कानपुर का गोविंदपुरी, पुखराया, आगरा में ईदगाह जंक्शन, फतेहाबाद और गोवर्धन शामिल हैं। उत्तर मध्य रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इन स्टेशनों का पुनर्विकास कर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया गया है।
सारे यात्री विकास के कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे 12 मीटर FOB का निर्माण करना, पार्किंग की सुविधा विकसित करना, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट, फसाड का डेवलपमेंट। इसके अलावा बहुत सारे अन्य विकास कार्य हैं। जो साइनेज बोर्ड होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हुए एक तरह के साइनेज बोर्ड का निर्माण किया जाना, जिससे यात्री सुविधा के साथ जो सुविधाएं उस स्टेशन पे उपलब्ध हैं वहां तक पहुंच सके।
उत्तर पूर्व रेलवे के मैलानी, गोंडा के स्वामी नारायण छपिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गुला गोकर्णनाथ स्टेशन, रामघाट हॉल्ट, थावे, इज्जत नगर, बरेली सिटी, उजहानी और हाथरस सिटी स्टेशन का भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त कर सिटी सेंटर के रूप में फिर से विकसित किया गया है। इज्जत नगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।
ये चारों स्टेशन का लोकार्पण होने जा रहा है। इन सभी में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को डेवलप किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया के सुधार हो, फसाड का इम्प्रूवमेंट हो, लाइटिंग सुधार हो, साइनेजों का सुधार हो, और नए टॉयलेट ब्लॉक्स भी बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म का विस्तारीकरण किया गया है। दिव्यांगजन की सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो इन सारी सुविधाओं के साथ ही हमारे स्टेशन एक नए रूप में निखर के आए हैं, जिससे यात्रियों को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिजनौर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और आधुनिकरण पूरा हो चुका है। स्टेशन में नए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 620 मीटर की गई है। गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के साथ साथ प्रवेश द्वार को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित किया गया है। करछना रेलवे स्टेशन को भी योजना के तहत विकसित किया गया है।
तो अभी आपने जैसा कि चर्चा की इन स्टेशनों में जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके प्रचार प्रसार की, अब एक और जो पहलू है जिसका भी आपने जिक्र किया था कि शहरों का ये केंद्र बनने जा रहे हैं स्टेशन। खासतौर पर जब हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो उसमें आता है कि शहर से स्टेशन अलग थलग ना रहे, यानी जो मेट्रो लाइन है, रेलवे लाइन है या बस है, वो आसानी से इन स्टेशन से जुड़ जाए। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बड़े शहरों में बहुत बड़ी संख्या में मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है, और अब तो नमो भारत जैसी जो तेज रफ्तार वाली रेल है उसका भी उद्घाटन हो ही चुका है। तो आप कैसे देखती हैं कि जब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी, सभी लाइनें एक साथ आएंगी, तो यात्रियों को इससे कितनी ज्यादा सहूलियत होगी?
स्टेशन्स पर अगर आप देखेंगे तो एक यात्री को एक मोड से दूसरे मोड में ट्रैवल को शिफ्ट करने में काफी चलना पड़ता है या काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो ये स्टेशन्स इस तरह से डेवलप किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन हो जाए। अगर मेट्रो आ रही है तो मेट्रो वहां पर सीधे सुविधाजनक रूप से रेलवे स्टेशन के साथ इंटीग्रेटेड हो और यात्रियों को बहुत ही क्लियर पाथ मिले एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए। बस स्टेशन्स जो हैं पास में वो इंटीग्रेट किए जाए, उसके लिए कहीं कहीं स्काईवेज भी बन रही हैं जो कि ऊपर से वॉकवेज होंगी। आपको बीच रोड को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होगी, ट्रैफिक को झेलने की जरूरत नहीं होगी, आप ऊपर ऊपर सीधा बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से आप सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है इस परियोजना के तहत। एक एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा है साबरमती स्टेशन, जहां पर हाई स्पीड रेल भी आ रही है। तो ये स्टेशन ऐसा है कि यहां पर आपको भारतीय रेल का स्टेशन, हाई स्पीड का स्टेशन, मेट्रो और बस सब कुछ एक जगह पे इंटीग्रेटेड तरीके से मिलेगा। और सारा ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेटेड है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फुटफॉल रहेगा और बढ़ेगा। इसलिए इस जगह को और भी ज्यादा रीडेवलप किया जा रहा है इसके कमर्शियल पोटेंशियल को देखते हुए, कि ये एक ऐसा हब बन जाए जहाँ पर लोग अपनी सांस्कृतिक जरूरतें, अपने एंटरटेनमेंट की जरूरतें या अपनी कमर्शियल आवश्यकता के लिए भी स्पेस का इस्तेमाल कर सकें।
रेलवे का ये भी ये फोकस है कि अब जो भी प्रोजेक्ट्स हों वो पर्यावरण के अनुकूल हों। कैसे पर्यावरण अनुकूल इन स्टेशनों को बनाया जा रहा है?
जहां तक स्टेशन्स को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की बात है तो यहां पर इनकी डिजाइन, इनका जो मास्टर प्लान है, एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान पहले बनता है और छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं है इन अमृत भारत स्टेशन्स में। यहां पर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहले मास्टर प्लानिंग के तहत डिस्कस किया जाता है बहुत डिटेल में और हर एक पहलू के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है बारीकी से, जिसमें कि एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो यहां पर जितनी भी बिजली की व्यवस्था है वो सब एलईडी होगी। यहाँ पर जो वेंटिलेशन है उसके ऊपर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से हवा का बहाव रहे कि आपको एयर कंडीशनिंग की मिनिमम आवश्यकता हो और इस गर्मी के माहौल में भी आपको वहां पर सुविधाजनक स्थान मिले बैठने के लिए या इंतजार करने के लिए। साथ ही यहाँ पर जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है या वेस्ट डिस्पोजल होता है उस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है कि वो किसी भी तरह से एनवायरमेंट को हानि ना पहुंचाए। और यहाँ पर जो रेलवे लाइन प्लेटफॉर्म पे आती है वो एक कंक्रीट के बेस पे बनी होगी, जिससे कि वहाँ एक तो साफ सफाई आराम से हो सकेगी और दूसरी चीज उसमें आवाज बहुत कम हो जाती है जब ट्रेन उस पर से गुजरती है, तो उसमें जॉइंट्स भी बहुत कम होते हैं इसलिए वहां से जब ट्रेन गुजरती है तो जो आवाज है उसका स्तर बहुत घट जाता है, इसलिए एक वो कम्फर्टेबल एनवायरमेंट मिलता है वहां के यात्रियों के लिए। तो इसलिए एनवायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज है और ये इन सारे स्टेशंस को ग्रीन रेटिंग और ग्रीन बिल्डिंग के तहत भी एग्जामिन किया जा रहा है, इनका ऑडिट हो रहा है जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और ग्रीन बिल्डिंग बने।
बिल्कुल, अब हम अपनी संवाददाता अपर्णा खुंट के पास चलते हैं जिन्होंने अहमदाबाद से हमें ये रिपोर्ट भेजी है। गुजरात में भी बड़ी संख्या में अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, कुल मिलाकर यहाँ 18 ऐसे स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आ रहे हैं, तो आइए ये रिपोर्ट सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में चल रही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत गुजरात के 18 प्रमुख रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किए गए इन स्टेशन में अब भव्य प्रवेश द्वार, आधुनिक प्रतीक्षालय, हाई मास्ट, लाइटिंग, डिजिटल सूचना प्रणाली और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध है। टाकोर स्टेशन पर भगवान रणछोड़ राय जी की प्रतिमा, करमसद रेलवे स्टेशन पर सरदार पटेल जी की प्रेरणादायक विरासत, पालीताणों में जैन तीर्थयात्रियों की सुविधा के अनुसार सुविधाजनक बदलाव और मोरबी में औद्योगिक विरासत की झलक को स्टेशन डिजाइन में समाहित किया गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुधीर शर्मा ने कहा,
जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत 87 स्टेशन गुजरात में ऐसे हैं जिनका की नवीनीकरण किया जा रहा है, अपग्रेडेशन है, कुछ में बिल्डिंग नहीं बन रही है। तो ये कुछ 87 हैं जिसमें 18 में काम पूरा हो गया। इन 18 स्टेशनों का कल लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों से होगा। देखिए, इसकी जो अवधारणा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन ये है कि जो रेलवे स्टेशन है वो सिटी का हिस्सा है और सिटी का सेंटर है जहां बहुत सारी चीजें होती है, सोशल स्पेस है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, पर मुख्यतः फोकस ये है कि उन्नत सुविधाएं मिले और विरासत और विकास का संगम हो, यानी कि जो सिटी की कल्चर है स्टेशन उसका हिस्सा है तो उसका डिपिक्शन होना चाहिए।
भावनगर मंडल रेल प्रबंधक रवेश कुमार ने बताया कि अमृत भारत योजना के तहत भावनगर मंडल राजूला, सीहोर, पालीतणा, जामजोधपुर, लिमड़ी और महुआ जैसे 6 स्टेशन का पुनर्विकास पूरा हो चुका है।
अमृत काल में भावनगर मंडल के 17 स्टेशन नव निर्माण के लिए चिन्हित किए गए। इन स्टेशन पर लगभग 200 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 6 स्टेशन पे कार्य पूर्ण हो चुका है जिनका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई को किया जाएगा। इन स्टेशन्स पर जो सुविधाएं हम लोगों ने दी हैं, मुख्यतः हम लोगों ने सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूव किया है, दिव्यांग जनों के लिए खास तौर से हम लोगों ने ध्यान रखा है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, एडिशनल प्लेटफॉर्म्स की लंबाई जहां चाहिए थी वहां बढ़ाई है हम लोगों ने, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी हम लोगों ने बढ़ाई है जहां जरूरत थी, लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वेटिंग हॉल्स को इम्प्रूव किया गया है।
वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भड़के ने बताया कि पुनर्विकसित 18 स्टेशन में वडोदरा मंडल के 5 रेलवे स्टेशन डाकोर, करमसत, उत्तरान, डेरोल और कोसंबा शामिल है।
इसमें से जो महत्वपूर्ण 5 स्टेशन जो वडोदरा मंडल में है उसमें सबसे महत्वपूर्ण डाकोर है, उत्तरान है, करमसार है, कोसंबा है। इसमें ये 5 स्टेशन में करीब 47 करोड़ की लागत आई है। इस प्रोजेक्ट में हमने ना सिर्फ इन स्टेशन का कायाकल्प किया है, स्टेशन का रंग रूप बहुत सुंदर तरीके से किया है, बट उसमें हमने ये ध्यान रखा है कि जो स्टेशन की ओरिजिनल आर्किटेक्चर है उसको बरकरार रखा है और जो सांस्कृतिक महत्वपूर्ण वहाँ की गतिविधियां हैं उसको स्टेशन पे हमने दिखाया है। और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखा है कि जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, यात्री आएंगे उसमें जो दिव्यांग यात्री भी आएंगे उनको स्टेशन पे अंदर आते ही बुकिंग ऑफिस से लेके उनका विश्रामागृह, रुकने की जगह, वेटिंग हॉल, FOBs, उनका कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो बैठ पाए, जिससे ट्रेन में जा पाए, उनकी बाकी सुविधाएं प्लेटफॉर्म, उनके सरफेस प्लस उनके पानी की सुविधाएं, हर सुविधा पे ध्यान दिया गया है। हर सुविधा इसको बिल्कुल ही अपडेटेड प्रतीक में लाया गया है। 10 और स्टेशन जो है इस साल में पूर्ण करने का हमारा टारगेट है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना न केवल बुनियादी ढांचे के विकास की मिसाल बन रही है बल्कि यह भारत के विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक सशक्त कदम है। इन स्टेशनों की स्वच्छता और सुरक्षा में आम जन की सहभागिता भी बहुत अहम है क्योंकि भारतीय रेल न केवल देश की जीवन रेखा है बल्कि यह भारत की संयुक्त विरासत और भविष्य की दिशा को भी दर्शाती है।
अभी हमने जैसा कि बात की गुजरात के और तमाम ऐसे स्टेशन, खासतौर पर ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन है ये संस्कृति और कला का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने भी जैसा कि अभी बातचीत में जिक्र किया था, तो हम कुछ उदाहरण अगर यहाँ ले, जैसे अहमदाबाद का स्टेशन, यहाँ का डिजाइन मोटेरा सूर्य मंदिर से प्रभावित है, इसी तरह से द्वारका स्टेशन का जो डिजाइन है वो द्वारकाधीश मंदिर से प्रभावित है। इसी तरह से हम अगर गुरुग्राम स्टेशन की बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि इसकी थीम आईटी थीम पर आधारित है। ओडिशा का एक प्रमुख स्टेशन भगवान जगन्नाथ मंदिर की शैली से बना हुआ है, यहाँ का डिजाइन इसमें दिखाई देता है। तो कैसे ये स्टेशन अपने अपने क्षेत्र की जो वास्तुकला है, स्थापत्य कला है या जो संस्कृति है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और कैसे इससे एक बहुत प्रभाव दिखाई देता है। जब भी कोई पर्यटक स्टेशन पर आता है और रेल में यात्रा करता है तो उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि यहाँ की संस्कृति और कला की क्या महत्व है, क्या समृद्धि है।
जी बिल्कुल, अगर आप अयोध्या स्टेशन देखेंगे जो कि बन चुका है और उसका इनॉग्रेशन हो चुका है, वो एक जीता जागता नमूना है कि किस तरह से स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो वो स्टेशन छवि दिखाता है आपको कि आप किस जगह आ रहे हैं, उसकी सांस्कृतिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस क्या है, उस स्थान के लिए किस तरह का महत्व है और वहां पर उस शहर की जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज है वो वहां पर कोशिश की गई है कि वो स्टेशन उसको दर्शाए। ऐसे ही सिद्धार्थ नगर स्टेशन जो है वहां पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी उसके नजदीक है, तो इसलिए वहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है। इसी तरीके से हरेक स्टेशन पे, हरेक शहर से और वहां की जो लोकल आर्किटेक्चर शैली है उसको भी जहां तक रेप्लिकेट किया जा सकता है वो उसकी करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अगर हम केरल के कुछ स्टेशन देखेंगे तो वो केरल का जो आर्किटेक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करती है और लोकल जो इथोस हैं उनको वहां पर रेप्लिकेट किया जा रहा है, जिससे कि ये स्टेशन्स जो हैं, अगर आप हम्पी के स्टेशन देखेंगे, हम्पी स्टेशन जो है वो हम्पी के जो रुइंस हैं उनको उनके स्टेशन्स के पिलर पे रेप्लिकेट कर दिया गया है। तो जो भी उस एरिया की, आसपास के इलाके की इम्पोर्टेंस है उसको उस स्टेशन में समाहित करने की पूरी कोशिश की गई है।
बिल्कुल, ये स्टेशन न सिर्फ यातायात का माध्यम है बल्कि ये कहा जा रहा है कि सेवाओं का, सर्विसेज का भी बहुत बड़ा ये सेंटर बनने वाले हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव लाउंज, बिजनेस मीटिंग के लाउंज इसमें शामिल होने जा रहे हैं, तो इनका क्या महत्व होने वाला है।
जी, ये देखा हम लोगों ने जब इनका मास्टर प्लान डिस्कस हो रहा था कि यहाँ पर काफी सारी कमर्शियल स्पेस बनाने का पोटेंशियल है और अगर आप देखेंगे जो छोटे शहर हैं वहां पर इस तरह की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं होती है या बहुत महंगी होती है, तो इस स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या किया जा सकता है। अगर हम वहां पर एग्जीक्यूटिव लाउंज बना दें या वहां पर मीटिंग रूम्स दे दें, वहां पर वाईफाई कनेक्टेड कियोस्क दे दें जहां पर यात्री जो है वो अपना काम भी करते रहे, इंतजार कर रहे हैं अगर किसी चीज का, तो वहां पर वो काम भी बिना किसी बाधा के कर सके। शहर के कुछ लोगों को अगर किसी मीटिंग रूम की आवश्यकता है तो वो भी उनको यहाँ पर बहुत आसानी से उपलब्ध हो सके। तो बहुत सारा डेवलपमेंट और खास तौर से जो मिडिल लेवल के हमारे टू टियर टाउन्स हैं उसमें इस प्रकार की बिल्डिंग बनाई जाए जिससे कि उस शहर का भी विकास संभव हो सके इस स्टेशन के माध्यम से।
जी, सबसे जो जरूरी बात इसमें आती है वो है जो एक आम यात्री जानना चाहता है कि साइनेजेस अच्छे से हों और सूचना प्रणाली का जो तंत्र है वो भी बेहतर हो, जिससे कि एक आम यात्री को किसी भी जानकारी के लिए भटकना ना पड़े। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत इन स्टेशनों में साइनेज और सूचना प्रणाली को और ज्यादा अच्छा किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा, जिससे कि आसानी से किसी भी यात्री को सूचना प्राप्त करने में कोई परेशानी ना हो।
जी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि जो हमारी साइनेजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज की जाएं। इसके ऊपर एक पूरी कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई और उन्होंने एक एक साइन किस तरह का होगा, कहाँ पर लगेगा और उसकी साइज क्या होगी, उसके अक्षर कैसे होंगे, उसकी रीडेबिलिटी कैसी होगी, उसके साथ जो उसका आइकॉन है वो क्या होगा और उसका रंग क्या होगा उस साइन का, तो इस तरीके का एक पूरा बुकलेट बना के भारतीय रेल ने इसको इशू कर दिया है एज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कि पूरे भारत में भारतीय रेल के हर एक स्टेशन पे एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ साइनेज हो, जिससे कि यात्रियों को ये ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो या समझने में कोई परेशानी नहीं हो कि कहीं पर रिटायरिंग रूम इस तरह से दिखाया गया है और कहीं पर किसी और तरह से दिखाया गया है। तो
वो यूनिवर्सल हो,
पूरा यूनिवर्सल कर दिया गया है। जैसे जैसे ये रीडेवलप होंगे स्टेशन, सब जगह यही सेम स्टैंडर्ड साइनेज मिलेगी, जिससे कि समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। साथ ही इन्फॉर्मेशन जो यात्री को आवश्यक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी गाड़ी कब आ रही है, कहाँ आ रही है, किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है और उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मैं कैसे जाऊं, बाएं जाऊं, दाहिने जाऊं, कैसे जाऊं, तो ये सारी चीजें भी उस साइनेज के तहत सॉल्व की गई है कि स्टेशन को नेविगेट करने में जिस तरह के साइनेजेस की आवश्यकता हो वो भी बहुत आसानी से दिखाई दे कि आपको प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है तो आप किस तरफ से।
तो तकनीक का भी इसमें बहुत इस्तेमाल होगा।
जी, इसमें तकनीक का बहुत इस्तेमाल है क्योंकि ये पूरा इंटीग्रेटेड स्टेशन मैनेजमेंट प्रणाली के तहत इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स रहेंगे जिसमें कि ट्रेन का आना जाना तो साफ दिखाई देगा ही, साथ ही प्लेटफॉर्म किधर है वो भी दिखाई देगा। और ये एक ऐसा स्टेशन का भी टच एंड फील कियोस्क बनाने की बात है जहां पर टच स्क्रीन के जरिए आप उस पूरे स्टेशन का लेआउट देख सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ जाना है तो वो आपको किस रास्ते से जाना सबसे सुगम होगा।
बिल्कुल, तो ये तो बात हुई रेलवे स्टेशनों की, क्योंकि अभी हमारे पास कार्यक्रम में वक्त है तो हम कुछ और दो तीन पहलुओं पर आपसे जरूर चर्चा करना चाहेंगे। एक तो ये कि अब रेलवे ने एक, मतलब हमारा जो भारत का रेल नेटवर्क है वो एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जब से वंदे भारत, नमो भारत जैसी रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ रही हैं और आधुनिक ये गाड़ियां यात्रियों को एक अलग ही अनुभव दे रही हैं। तो कैसे आप इससे भारत की एक रेलवे की तस्वीर को बदलता हुआ देख रही हैं और कैसे यात्रियों के लिए एक नया अनुभव देने वाली है, क्योंकि अब तो अमृत भारत रेल का भी हम नाम सुन रहे हैं।
जी, अमृत भारत रेल कोई नई चीज अब नहीं रहेगी, दो गाड़ियां तो पिछले साल ही चालू कर दी गई थी जो कि अमृत भारत है, बल्कि वंदे भारत के बारे में सब कोई जानता है, अमृत भारत के बारे में भी सबका समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि अमृत भारत ट्रेन इस तरह की ट्रेन बनाई गई है जो कि अगेन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है, उसमें यात्री के लिए सुविधाजनक सीट्स और आने जाने के लिए जिस तरीके से उनको स्मूथ पाथ मिले उस तरह का ध्यान रखते हुए इसके इंटीरियर्स को डिजाइन किया गया है। और ये ट्रेन अमृत भारत है, ये अभी तक जो चली है वो कम्प्लीटली नॉन एसी ट्रेन है, इसलिए यहाँ पर हमारे जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए ये ट्रेन्स बनाई गई हैं, जिससे कि उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो और आरामदेह हो और विश्वस्तरीय हो। तो अमृत भारत ट्रेन्स भी और आने वाली हैं और वंदे भारत तो बन ही रही हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स आने वाली हैं और नमो भारत ट्रेन शॉर्ट डिस्टेंस की दूरी के लिए है जो कि फिर विश्वस्तरीय ट्रेन्स हैं जिनका की अनुभव बहुत ही अच्छा है।
एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है कि हम 100% अपनी जो लाइन है रेलवे लाइन उसे इलेक्ट्रिफाई करने की ओर बढ़ गए हैं और कल प्रधानमंत्री जब बीकानेर में होंगे तो इससे जुड़ी हुई कुछ जो रेल लाइन है उनका भी उद्घाटन करने वाले हैं।
ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये भारत का और भारतीय रेल का कमिटमेंट है कि हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल रखें और इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने 2030 तक नेट जीरो का भी बेड़ा उठाया है।
तो यानी हम कह सकते हैं कि जो अमृत भारत स्टेशन योजना है और जो भारतीय रेल की तमाम और योजनाएं हैं उसकी बदौलत अब हम सुरक्षित, सुलभ और स्वच्छ और जो आरामदेह और आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को अब आने वाले समय में देख रहे हैं और इससे यात्रियों का एक अलग ही अनुभव होगा और यात्रियों के साथ साथ जो विश्व स्तरीय रेलवे ढांचा है उसका भी एक बहुत बड़ा हम नमूना आने वाले समय में देखेंगे, जिसके हम नतीजे अभी देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो रेलवे में आए बदलाव हैं उससे यात्रियों को एक अलग ही अनुभव महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जया जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने अमृत भारत स्टेशन योजना के साथ साथ और दूसरी तमाम रेलवे से जुड़ी हुई बुनियादी ढांचा की योजनाओं पर हमारे साथ चर्चा की और बहुत जरूरी जानकारियां हमारे साथ शेयर की। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अमृत भारत स्टेशन योजना से रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और आधुनिकीकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेलवे बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इससे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।